ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति उत्तम भक्तिर भवती नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् श्रीचैतन्य ईश्वरम् परमानन्द माधवम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस स्मरण में मदद हो सकती है, इसीलिए उसे ग्रंथों की भी रचना हुई है। एक समय तो हुआ शिष्यगण भक्तगण कथा का उपदेश का श्रवण किए तो बराबर हर कही हुई बात को यथारूप स्मरण किया करते थे। ऐसी अद्भुत स्मृति हुआ करती थी प्राचीन काल में सत्य त्रेता द्वापर इत्यादि युगों में, अब कली के प्रभाव से वो संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए जैसे ही कलयुग का प्रारंभ हुआ तो जो ज्ञान शाश्वत है, लीला जो शाश्वत है, उसकी रचना हुई ग्रंथों के रूप में, ग्रंथ बने। ज्ञान तो सदा के लिए है लेकिन वो लिखित नहीं था, लिखना तब पड़ा जब कलयुग प्रारंभ हुआ। तो श्रील प्रभुपाद भी कहा करते थे, इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर समथिंग राइट इट डाउन, आप कुछ बात याद करना चाहते हो, स्मरण रखना चाहते हो तो क्या करो, लिख लो, नहीं तो कोई मति का कोई भरोसा नहीं है, इस जिंदगी का ही भरोसा नहीं है। क्या जिंदगी का भरोसा इस जिंदगी का। वाह, लेकिन राधा रानी के चरणों की अगर धूल मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तो वह कथा में, कथा का जो काल है ऑफ ऑफ मोड में रखिए अपने सारे मोबाइल्स, कि कथा जब हम सुनते हैं या जब भी जब करते हैं तो हम भगवान से फोन, भगवान से संपर्क चल रहा है, भगवान के साथ संपर्क हो रहा है और फिर पुणे से फोन आ गया, तो भगवान के साथ जो बातचीत चल रही, संवाद चल रहा है, उसको वही ठप करके हम लोग मानो पुणे से आया हुआ अधिक महत्वपूर्ण समझ के उस संवाद को, आध्यात्मिक संवाद को वही रोक देते हैं। तो वह कम से कम कथा के समय, जप के समय आप संसार के सारे बंधनों से, उत्तरदायित्वों से, चिंताओं से मुक्त होके कथा में आसन ग्रहण करना चाहिए। आसन में, सुखासन में बैठ सकते हैं आप, यथासंभव पद्मासन में बैठ सकते हो या वज्रासन में बैठ सकते हो, शीर्षासन में नहीं बैठना, न तो शवासन में, एक शव आसन भी होता है, मत लेट ही जाना। तो सुखासन, जैसे आप लोग आराम से मांडी घालून जो हम लोग, आप लोग बैठते हो, तो सुखासन में बैठ के आसन, मतलब उसके साथ कुछ काल की अवधि भी है। आसन लगाना मतलब इतने समय के लिए हिलेंगे नहीं, नहीं तो आसन पूरा नहीं हुआ, आसन का पूरा फल नहीं। और फिर शरीर को तो स्थित किया हमने, जो थोड़ा सरल है, आसान हो सकता है। फिर मन, मन पर हमको कार्रवाई करनी पड़ती है। शरीर को जहां बिठा दिया वही बैठ जाएगा, लेकिन अंदर का मन जो है, मनः चंचलम ही मनः कृष्णः, मन का क्या परिचय है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म। अर्जुन ने कहा भगवान से, ये मन कैसा है, चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण ये मन तो बड़ा चंचल है, बलवत, बलपूर्वक हमें कहीं खींच के ले जाता है। तो भगवान स्वीकार तो कि हां हां, मन का स्वभाव ही तो ऐसा है, मन के ये तो लक्षण है, तो भगवान ने उपदेश किया अर्जुन को, कहा यतो यतो मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः आत्मन्येव शमनेत। तो मन जहां जहां जाता यतः यतः निश्चलति मनः, ये चंचल या निश्चल मन यतः यत जहां जहां जाता है ततः ततः यतः यतः जहां जहां जाता है ततः ततः वहां वहां से उसे पुनः खींच के आत्मनि एव वशम नयेत। इसको वश में करना चाहिए, मन को वश में करना चाहिए। आत्मनि किसमें और लगाना किस में मन को, आत्मनि या परमात्मनि, परमात्मा में इस मन को लगाना चाहिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और इस प्रकार का अभ्यास तुम करते रहोगे, किस प्रकार का अभ्यास, मन जहां जहां जाता है वहां वहां से उसको खींच के पुनः भगवान में लगाना है। और वैसे साधक का यह अभ्यास निरंतर चलते रहता है, पूरे जीवन भर भी चल सकता है, लेकिन वो प्रयास को नहीं छोड़ता है। कि मन व्यस्त रहता है, मैं कहने जा रहा था, मन हम लोग जैसे जग जाते हैं तो मन अपना भाग दौड़ शुरू हो जाती है, लेकिन जब निद्रा की अवस्था में उस वक्त भी मन वैसे सक्रिय रहता ही है। हम स्वप्न देखते हैं और कई तो गाढ़ निद्रा की अवस्था में कुछ मन के कार्यकलापों का थोड़ा पता नहीं चलता, नहीं तो वैसे मन निद्रा की अवस्था में जागृत अवस्था में सदैव तैयारी रहता है दौड़ने के लिए। और मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही तो हमारे या तो बंधन का कारण, या वही मन हमारे मुक्ति का कारण भी हो सकता, एक ही मन। मन एव मनुष्यानाम कारणम कारण बन सकता है बंध मोक्षयो, या तो बंधन का या मोक्ष मुक्ति का। तो कैसे हम लोग मन का उपयोग करते हैं, अगर मन हमारा मित्र है तो हमारी मदद करेगा, और मन हमारा अगर शत्रु है तो हमें बंधन में रखेगा, सदैव रख सकता है बंधन में। तो मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के उपयोग से हम इस चंचल मन पर काबू रख सकते हैं, नियंत्रण रख सकते हैं, इस मन की देखरेख कर सकते हैं, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, क्या सोच रहा है, इसके क्या संकल्प है, इसके क्या विकल्प है। मन के दो कार्य वैसे मन सदैव करते रहता है, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, किसी बात का स्वीकार करना, किसी बात का अस्वीकार करना, ये हर क्षण मन करते रहता है, संकल्प विकल्प। तो जो अच्छी बातें हैं, मंगल आरती जाने की बात अच्छी है कि नहीं, तो अलार्म ने तो जगा दिया, 5 बजे की मंगल आरती है तो 4 बजे जगा दिया अलार्म ने, बुद्धि का उपयोग करते हुए अलार्म तो सेट कर दिया था, लेकिन जब नींद खोल दी इस अलार्म क्लॉक ने तो मन क्या कहता है, और तो पूरा 1 घंटा है, और थोड़ा स्नूज, उसमें होता है स्नूज, थोड़ा पांच मिनट के बाद, फिर पांच मिनट के बाद जी पिटाई करते हैं दोस्त, अलार्म क्लॉक की पिटाई करते हैं। एक समय तो मुर्गे ही अलार्म क्लॉक हुआ करते थे, कुकुकु, मुर्गा जब बोलता है, लेकिन मुर्गा तो दूर हुआ करता था, उसकी पिटाई नहीं कर सकते। पिटाई के आजकल तो हमने मुर्गे को हटा ही दिया, तुम बदमाश कहीं का मुर्गा, प्रातःकाल की जी मीठी नींद है उसको बिगाड़ देता है, आ जाओ इधर, फिर उसको हम लोग काट के नाश्ते में खा ही लेते हैं, खाया हुआ खा रहे हैं। द्वारका में तो भगवान उस मुर्गे की आवाज, मुर्गे की बांग को सुनते ही भगवान द्वारकाधीश जग जाते थे, सभी गृहस्थों के लिए आदर्श। नेचुरल अलार्म क्लॉक, थोड़ा दाना पानी खिलाओ तो अपना अपने धर्म को निभाते हैं, मनुष्य जाति को सेवा करते हैं। प्रातः काल में भगवान ने मनुष्य को जगाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गों की व्यवस्था की, मुर्गा। इस प्रकार हम एक दूसरों की सहायता करते हैं, ये नेचुरल है। तो उसके स्थान पर हमने अलार्म क्लॉक, फिर उसके लिए फैक्ट्री जाओ, इंडस्ट्री में फिर अलार्म क्लॉक या और भी क्लॉक्स बनेंगे, जिसके कारण फिर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कई सारे तनाव दबाव, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अननेचुरल लाइफ, कृत्रिम जीवन के कारण। लेकिन भगवान ने तो व्यवस्था की है हमारे जगाने की, मुर्गा मुर्गा ही जगा देता है। तो उस वक्त हमारा मन जो है ये संकल्प विकल्प चलता रहता है इस मन का, तो सुनना हमें मन का नहीं चाहिए, हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। जो श्रेयस्कर है, श्रेय है, जो हमारे हित की बात है, तो बुद्धि का उपयोग करके हमें निश्चित करना चाहिए कि ये मेरे हित की बात है, और फिर वैसे करना ही चाहिए। मन जो कुछ कहे, जो भी कहे मन, मन की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। और मन को निग्लेक्ट करते करते मन की ओर ध्यान नहीं दे रहे, मन को टाल रहे हम, बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, तो फिर मन सीधा हो जाएगा, मन भी बुद्धि के अनुसार कार्य करेगा। ददामि बुद्धि योगम, भगवान मैं बुद्धि देता हूं मेरे भक्तों को, तो उस बुद्धि का उपयोग करते हुए हमें मन को अपना मित्र बनाना चाहिए, फ्रेंड बनाना चाहिए। तुम्हारा मित्र मन है, वही मित्र शत्रु बन सकता है अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया। तो बुद्धि शास्त्रों से, आचार्यों से, गुरुजनों से प्राप्त होती है, तो उस बुद्धि के प्राप्ति के लिए महामति जो सुत गोस्वामी है या साक्षात भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का उपदेश सुना रहे हैं, तो उनके बुद्धि का, उनके मार्गदर्शन का उपयोग हम कर सकते हैं, उन्हीं की कही हुई बातों को स्वीकार करेंगे तो हम भी हो गए बुद्धिमान, नहीं तो रह गए हम लोग बुद्धू, रह गए बुद्धू। क्या हुआ, शरीर को तो बिठा दिया यहां पर, फिर हमें देखना चाहिए मन क्या कर रहा है, मन कहां है, क्या मन कथा में है कि मन और कहीं है, मैं सो तो नहीं रहा हूं या सो तो नहीं रही हूं, इसको भी देखना होगा। कहां है मेरा मन इस वक्त, या हमें भगवान का जप ध्यान पूर्वक जप नहीं करना क्या है, अपराध है। प्रातःकाल में हम लोग 10 नाम अपराधों का एक एक करके स्मरण कर रहे थे। 10 नाम अपराध कहने के उपरांत अंत में हम लोग कहते हैं ध्यान पूर्वक जप नहीं करना भी एक अपराध है। ध्यान पूर्वक जप नहीं करना अपराध, जप तो किया लेकिन ध्यान पूर्वक नहीं किया तो अपराध किया। कि जप किया मतलब भगवान को बुलाया ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तुमने पुकारा और चल भगवान चले आए, आपने पुकारा इसीलिए। लेकिन भगवान जब आए तो जिसने पुकारा था वो वहां नहीं था भगवान को रिसीव करने के लिए, भगवान के स्वागत के लिए, थैंक यू आइए पधारिए मेरे हृदय प्रांगण के सिंहासन पर आप विराजमान होइए, इत्यादि इत्यादि कई प्रकार से स्वागत किया जा सकता है। मन से भी स्वागत, सुस्वागतम कृष्ण, ऐसा स्वागत कर सकते हैं हम लोग। लेकिन भगवान जब आए तो हुआ, उनका स्वागत नहीं हुआ। हम जैसे हम कहे पुणे में हम पहुंच गए, भगवान यहां आ गए जहां जहां से उन्होंने नाम सुना उनका, इस ओर से नैमिषारण्य की ओर से मुझे कोई बुलावा आया चलो, तो भगवान दौड़े भागे दौड़े आए। तो हम लोग कहां थे, हम रायचूर में थे, हम रायचूर पहुंच गए। पुकारना शुरू कर दिया तब तो थे यहां पर, लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, आधा मंत्र कहा तब तक तो थे, लेकिन आधे मंत्र में फिर पहुंच गए और कहीं पहुंच गए, कितने भगवान आ गए। तो ये ध्यान पूर्वक जप नहीं हुआ, ध्यान पूर्वक जप नहीं हुआ, या ध्यान पूर्वक कथा भी कैसी सुननी है, कैसी सुननी चाहिए, ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए। ध्यान से तो सुनी बात लेकिन श्रद्धा से नहीं सुनी, हर बात गौर से तो सुनी हमने, ध्यान पूर्वक तो सुनी लेकिन जो सुनी हुई बातों पर फिर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं। कई सारी शंका, फिर शंकाओं का समाधान तो हो सकता है, परिप्रश्नेन सेवया तो संभव है, कथा के अंत में पूछा जा सकता है। इसीलिए हमने कहा कि आप कथा के बाद प्रसाद के बाद फिर बैठिए, आपस में चर्चा कीजिए, कुछ समझ में नहीं आप कोई बात आई तो आप पूछिए औरों से पूछिए, कोई बात आपको समझ में नहीं आई लेकिन कुछ बात आपको समझ में अधिक आई औरों से तो औरों को सुनाइए। इस प्रकार बोधयंतः परस्परम संभव है। तो मन को हम प्रणाम कर रहे हैं, मन का तो हर वक्त उपयोग है, अगर वहां मन नहीं है तो जो भी हम कर रहे हैं उसका अपराध होगा, अधूरा वो कार्य होगा, उसमें त्रुटि होगी, कुछ दोष आएगा। हम प्रणाम कर रहे हैं, इसमें कहा प्रणाम का, प्रणाम करने या प्रणाम का एक नाम है साष्टांग दंडवत प्रणाम। कैसा प्रणाम कहिए सब, कैसा प्रणाम? वैसे पुरुष साष्टांग दंडवत करते हैं तो माताएं पंचांग दंडवत करती है। अष्ट मतलब आठ, और अंग मतलब अंग, आठ अंगों से किया हुआ प्रणाम, दंडवत प्रणाम या अष्टांग दंडवत प्रणाम या पंचांग पांच अंग। तो ये जो अष्टांग है, इस अष्टांगों में दो तो पैर हो गए, दो हाथ हो गए, फिर मंत्र भी कहना चाहिए, कोई स्तुति कहनी चाहिए, गुरु प्रणाम मंत्र कहना चाहिए। तो मुख, मुख भी एक अंग उसमें आ गया, और मन भी वहां होना चाहिए। प्रणाम कर रहे हैं तो मन पूर्वक प्रणाम करना है, हम कौन सी स्तुति कह रहे हैं या कौन सा प्रणाम मंत्र कह रहे हैं, नमाम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो प्रभुपाद का स्मरण, मन से स्मरण करें, मुख से कहे कहना है, मन से स्मरण करना है। तो एक सिर भी है, दो हाथ दो पैर, दो हाथ सिर और मन और वाणी और फिर शायद वक्षस्थल बच गया। तो शरीर के छह अंग है, स्थूल शरीर के छह अंग हुए, और सूक्ष्म स्तर पर और दो है, एक वाणी है और एक मन है। आठ की गिनती हो गई ठीक। तो अष्टांग, अष्टांग दंडवत प्रणाम। तो माताएं भी अपने मन का उपयोग करेगी, वो अंग भी, और वाणी का भी उपयोग करेगी और शरीर का भी। इस प्रकार साष्टांग दंडवत में या पंचांग दंडवत में कायेन मनसा वाचा भक्ति कैसे करते हैं, हम लोग भी ये दंड लेके चलते हैं, दंड लेके। इस दंड का नाम है त्रिदंड। कैसा दंड? ये सन्यास का दंड त्रिदंड, मतलब जिस व्यक्ति ने अपनी काया मन और वाचा प्रभु की सेवा में समर्पित की हुई है, तो अगर सन्यासी हम है या नहीं है, औपचारिकता हमने पूरी नहीं की है, लेकिन भक्ति में भक्ति करनी है तो शरीर से भक्ति, मन से भक्ति और वाणी से भक्ति करनी है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। योगी भक्ति, योगी कार्य करते हैं, अपने बुद्धि का भी उपयोग करते हैं। तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे तो वहां भी मन होना चाहिए, उस प्रणाम में मन होना चाहिए, मन पूर्वक प्रणाम करना है। हर बात कैसी करनी है? मनपूर्वक करनी है। पाप करना है तो वहां मन नहीं होना चाहिए, झट से बुद्धि का उपयोग करते हुए नहीं नहीं ये मेरे हित की बात नहीं है, इसको मैं नहीं कर सकता। अद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधः, आदि अंत। हाँ, कुछ समय के लिए मुझे कुछ सुख का, भौतिक सुख का तो अनुभव होगा, लेकिन दुख यो न यैवते, इसी से आगे जिसने मुझे दुख दिया सुख दिया वही मेरे दुख का कारण बन सकता है। तो थोड़े समय के लिए सुख, लेकिन निश्चित ही वही बात मुझे दुख में डालने वाली है, इसीलिए आदि अंतवत, आदि अंतवत नतीशु रमते बुधः। जो बुद्धिमान लोग हैं पुरुष हो सकते हैं, स्त्रिया हो सकती है। बुद्धिमान कौन बुद्धिमान है, क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, कौन बुद्धिमान है? केवल किसी ने एमए पीएचडी कर ली है, बड़े सर्टिफिकेट्स है, तो उसको बुद्धिमान शास्त्रों में हमारे धर्म में नहीं कहा है। बुद्धिमान कौन है? जय कृष्ण भजे, जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। चतुर या बुद्धिमान तो वो व्यक्ति है जो क्या करता है, जय कृष्ण भजे, लिखिए जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, वो व्यक्ति बड़ा चतुर है। यानी कि जो चालाकी से धन कमाता है उसको चतुर नहीं कहा हमारे धर्म में। जो भजता है भगवान को, जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, ये जो बुद्धिमान है, जो जानता है ये पाप है ये पुण्य है, इसको जानने वाला कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति। ये शरीर है और ये क्या है? आत्मा है। इसको जानने वाला कौन? बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता है। ये सत असत विवेक कहते हैं। कैसा विवेक? सत असत। सत मतलब शाश्वत और असत मतलब अशाश्वत या क्षणभंगुर क्षणिक। ये शाश्वत है, ये सदा के लिए है, ये कुछ समय के लिए है। तो मेरा शरीर कैसा है? क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए रहेगा। लेकिन मेरी आत्मा कैसी है? अजर अमर है, आत्मा शाश्वत है। ये है देवता और ये कौन है? कौन है? और ये सारे देवता है, सुर असुर हो गए, ठीक है। ये सुर है, ये असुर है। अब ये असुरों को अलग कर दिया, ओके, वो तो असुर है। फिर ये सुर है, ये देवता है और ये कौन है? हा? नहीं नहीं वो तो फिनिश्ड, हाँ भगवान है। एग्जैक्टली, ये देवता है लेकिन ये भगवान है। देवता भगवान नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझता है। जो देवताओं में और भगवान में जो भेद को जो समझता है वो बुद्धिमान हो गया। और ये स्वर्ग है तो ये वैकुंठ है। ये स्वर्ग है लेकिन ये कौन सा स्थान है? वैकुंठ है। इसको जानने वाला कौन हो गया? बुद्धिमान व्यक्ति। जान तो लिया कि वैकुंठ है लेकिन गया वह स्वर्ग, ये बुद्धिमता का कार्य हुआ? नहीं। जाना कहां है? कल भी हम लोग सुन रहे थे, हरि हरि, तुम्हारा गंतव्य स्थान कौन सा? कहां जाना चाहिए? स्वर्ग जाना चाहिए, वैकुंठ जाना चाहिए? वैकुंठ, माता जी वैकुंठ जाना चाहती। अच्छा, उससे भी ऊपर जाना चाहती, कहीं गोलोक जाना चाहती। स्वर्ग नहीं जाएंगे, आधी माताएं तो उनके समक्ष बड़े प्रश्न चिन्ह, क्या कहा जा रहा है? अब तक तो हम लोग, हमारे जो भी पूर्वज नहीं रहे उनकी तस्वीर के नीचे हमने तो लिखा था स्वर्गवासी, लेकिन ये महाराज तो ये करेंगे स्वर्ग जाना नहीं है, तो उनको कैसे मिलेंगे फिर? या कैलाशवासी, पता नहीं कि स्वर्गवासी थे कि नरकवासी, लेकिन हम तो आशा करते हैं। कहां गए हैं? स्वर्ग गए, लेकिन वो भी ठीक नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहिए। ये भागवत धर्म सिखाता है, ये भागवत धर्म, जिस भागवत को लेके हम लोग यहां बैठे हैं, जिस भागवत ग्रंथ के धाम में हम लोग पहुंचे हैं, वो भागवत सिखाता है कि हमें स्वर्ग हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, भगवान के धाम, क्योंकि भगवान स्वर्ग में नहीं रहते। स्वर्ग में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि स्वर्ग में भगवान नहीं रहते। स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता रहते हैं। तो देवताओं की पूजा करो, हम तो आपको रोकेंगे नहीं। देवान देव जो यान्ति, भगवान कहते ठीक है आपने देवताओं की पूजा की तो आप तो देवताओं के पास जाओगे। देवान देव जो यान्ति पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। भगवान ने स्पष्ट किया जो देवताओं के पुजारी है वे किनको प्राप्त होंगे? देवताओं को प्राप्त होंगे, वो देवलोक जाएंगे, स्वर्गलोक जाएंगे। लेकिन यान्ति मध्या जिनोपि माम, लेकिन जो मेरे पुजारी है, मेरी आराधना करते हैं कृष्ण की, मतलब कृष्ण की, वे कहां जाएंगे? कृष्ण कृष्ण लोग जाएंगे, वैकुंठ लोग जाएंगे, जहां कृष्ण का निवास है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति इस भेद को समझ सकते हैं, इस अंतर को जान सकते हैं। तो ये बुद्धि का उपयोग है सद असद, या सत्संग हो रहा है, या कैसा संग हो रहा है? ये सत्संग हो रहा है। हम लोग सत्संग के लिए यहां इस वन में, इस अरण्य में, नैमिषारण्य में आए हैं, लेकिन अन्यत्र कई जगह हो सकता है। लखनऊ में क्या हो रहा है? असत्संग हो रहा है। सत्संग और दूसरा असत्संग, लेकिन आदेश उपदेश क्या है? असत्संग त्यागात एई वैष्णवाचार। जो असत्संग को ठुकराता है, जो असत्संग से दूर रहता है, वही वैष्णव कहलाता है या कृष्ण भक्त कहलाता है। कृष्ण भक्ति की ये पहचान है, असत्संग से दूर रहता है। तो हम लोग यहां आके बैठ तो गए, बैठ गए आसन में बैठे, तो कुछ समय के लिए बैठना है, तभी तो आसन पूरा होगा। तो अभी तक हमारी कार्रवाई मन पर ही चल रही है, मन के संबंध में ही हम लोग कुछ चिंतन कर रहे हैं। तो मन को कैसे मन पर कैसे रोकथाम लगाया जा सकता है, तो समझना होगा कि मन से श्रेष्ठ है कौन? बुद्धि। वेरी गुड। इंद्रियों से श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, से श्रेष्ठ है आत्मा, और आत्मा से श्रेष्ठ है परमात्मा। तो ये इस प्रकार की श्रृंखला है, इसके ऊपर का ये अधिकारी, उसके ऊपर का ये अधिकारी, उसके ऊपर ये सेक्रेटरी, उसके ऊपर ये एडिशनल सेक्रेटरी, उसके ऊपर ये चीफ सेक्रेटरी, उसके ऊपर ये मिनिस्टर, उसके ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति। तो हमारे जीवन में भी, हम में भी इस प्रकार की व्यवस्था है, उसकी स्थापना करनी चाहिए हमें। कौन किसका सुनेगा, कौन किसका सुनेगा, तो हम लोग कुछ संगठित हो सकते हैं। ब्रजभूमि का कौन सुनेंगे, फिर उनका कौन सुनेंगे उसका, तो ये चेन ऑफ कमांड्स या ये चलता रहेगा, तो हम लोग संघटना होगी, और संघटना है तो कुछ हम लोग कार्य कर सकते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल कहते हैं। तो हम यूनाइट हो जाएंगे हम सब, हमारी जितनी भी शक्ति हमारे पास है उसका युक्ति पूर्वक उपयोग करना है। एक दूसरों के मन किसका सुन, किसको आदेश देगा, मन के ऊपर कौन है, फिर बुद्धि के ऊपर भी कौन है, बुद्धि कहां से प्राप्त करनी है। तो ये समझने की बातें हैं, कौन कौन है, हु इज हु। कौन सोने वाले हैं, कौन जगने वाले हैं, इसीलिए आसन स्पीकर को ऊंचे आसन पर बिठाया जाता है, वे भी आपके इस जमीन पर बैठ सकते हैं, लेकिन फिर पता नहीं चले कौन सो रहे हैं कि सो रहे कि नहीं। आधी जनता तो पीछे शवासन, पता कैसे चलेगा। इसीलिए थोड़ा ऊंचा आसन, और फिर वक्ता को केवल सुनना भी नहीं होता है, वक्ता को क्या करना होता है, देखना भी होता है। वक्ता के जो भी हाव भाव है कि मुद्रा है, कुछ बातें तो मुख से नहीं कही जाती, कुछ बातें तो आंखें कहती है, चेहरा कहता है, हाथ कहते हैं, समझे। तो टेप में, टेप रिकॉर्डिंग में तो वो नहीं आया, तो कई सारा मिस हो जाता है। फिर आजकल ऑडियो वीडियो चलता है, फिर उसमें थोड़ा आ जाता है अधिक। तो द बॉडी लैंग्वेज, फिर थोड़ा आसन ऊंचा होने से फिर श्रोता के लिए सुविधा होती है, फिर आदान प्रदान होता है वक्ता और श्रोता के मध्य में, इस प्रकार हमको तैयार करने में आधा घंटा चला गया। सुत गोस्वामी जब प्रवचन किया करते थे, जैसे ऋषि मुनि आ गए, झट से फटाफट कथा शुरू हो गई। ये जो इतना भाषण देने की उनको आवश्यकता नहीं हुआ करती थी, सभी ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आसन में बैठ गए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे कहते ही सब शांत हो गए। ये शांत हो गए मतलब ये नहीं कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया, बोलना तो सभी बंद करते हैं, लेकिन मन तो बोलते ही रहता है। तो शांत, साइलेंस प्लीज, शांत रहिए मतलब केवल बोलिए ही नहीं, इतनी बात नहीं कही जाती है, अपने मन को भी शांत कीजिए। शमः दमः, मन पर काबू, अंकुश, दमन, शमः। तो सभी ऋषि मुनि, 88,000 ऋषि मुनि रेडी, तैयार, बड़े उत्कंठित भी, सभी सुनने के लिए उत्कंठित, मानो वक्ता के मुख से निकले हुए वचनों को अपनी अपनी ओर क्या कर रहे, खींच रहे, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। जब प्रसाद बढ़ता है तो हम लोग जैसे दौड़ते हैं, मुझे मुझे मुझे, 20 हाथ एक साथ, तो उससे भी अधिक उत्कंठित हम प्रसाद के लिए जैसे उत्कंठित होते हैं, हम दौड़ते प्रसाद की ओर, हाथ आगे बढ़ाते हैं, स्वामी जी स्वामी जी। शायद उनका कुर्ता खींचेंगे, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। तो हमारी उत्कंठा प्रसाद के समय की उत्कंठा से अधिक उत्कंठित ये ऋषि मुनि इसीलिए जहां भी वो बैठे हैं वहां उनको उन शुद्ध गोस्वामी की बात सुनाई देती थी। हम लोग कुछ 300 ही भक्त है या कुछ ऊपर होंगे, 10-20, तो हमारे पास तो दो दो माइक्रोफोन चल रहे हैं और सुत गोस्वामी कथा सुनाए, 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुनाए, उनके पास तो हैंड माइक भी नहीं था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम तो भूल ही जाइए, लेकिन कैसे सुनते थे। कैसे सुनाते होंगे, कैसा वातावरण होगा उस समय। इतना शांत वातावरण इस रात्रि के समय, एक गांव के कुत्ते भौंक रहे हैं दूसरे गांव में सुनाई देता है। गांव अगर आप गांव वाले हो या रात्रि के समय जब शांति होती है तो दूर से भी कई बात कोई कर रहा है पुकार, तो एक दो मील दूरी पर सुनाई देगी। आपका अनुभव है कि नहीं कि मेरा केवल अकेला का है, कुछ तो कहो, थोड़ा सपोर्ट करो, मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। तो माइक्रोफोन पर कोई नहीं बोल रहा, ऐसे पुकार है, श्याम रामू या जो भी, तो दूर तक सुनाई देता। तो वातावरण अगर शांत है, पीसफुल है, तो कहे हुए जो शब्द है दूर दूर तक पहुंचेंगे और उसको कोई रोक भी नहीं रहा है। लेकिन इधर से भी आवाज आ रही, उधर से भी आवाज आ रही, तो क्या होगा, बीच में वो टकराएंगे, दे विल न्यूट्रलाइज, फिर कही हुई बातें आगे नहीं बढ़ेगी, उसका संक्रमण नहीं होगा। तो इतना पवित्र और शांत वातावरण, तो वो कहे हुए सुत गोस्वामी के कहे हुए वचन दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। और बोलने वाले भी तो सुत गोस्वामी या प्राचीन काल के लोग, तो लोग भी और उसमें भी ऋषि मुनि, उनका जो तेज और उनका जो ओज, उनका जो, तो कहे हुए वचन को थोड़ा जोश के कारण दूर दूर तक फेंक सकते हैं, उस आवाज को भेज सकते हैं, गिविंग बिग बूस्ट, जिसको बिग बूस्ट, कोई बॉल है तो उसको बूस्ट देंगे, ठुकराएंगे, उसमें बूट का ठोकर है तो फिर और दूर जाएगा। तो जितने जितने जोर से उसको फेंका जाएगा, जितने उसके पीछे शक्ति है, उतने ही दूर वो पहुंचेगा बॉल। तो जो वक्ता हुआ करते थे, इतने पावरफुल, इतने शक्तिमान, शरीर का भी शक्ति और आध्यात्मिक सामर्थ्य उनका, उनकी आवाज, उनकी ध्वनि दूर दूर तक पहुंच जाती थी। जैसे गाय की, गाय के पास कोई माइक्रोफोन है, कोई नहीं, क्या आवाज सुनाई दे रही। तो वातावरण भी शांत वातावरण और सुनाने वाले भी शक्तिमान और सुनने वाले भी, उनके मन भी शांत, हर कही हुई बात का एक एक अक्षर अक्षर को सुनने के लिए उत्कंठित है, मानो अपनी ओर खींच रहे हैं उस ध्वनि को, वक्ता के मुख से निकले वचनों को अपनी अपनी ओर उसको आकर्षित कर रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं। जब गाय कुछ विशेष ध्वनि कही होती है तो गाय क्या करती है, अपने कान जो ऐसे होते हैं जट से, क्या करती है, ऐसी करती है, वैसे कान ऐसे होते हैं। तो बैल गाय को कोई आवाज विशेष सुनाई देती है दूर से, तो या गाय को अपने ही बछड़े का आवाज सुनाई दिया तो गाय क्या करेगी, मतलब क्या करना चाहती है, उसको कैच करना चाहती है, मतलब एंटीना, एंटीना लगा दिया, खींच लिया बाहर। तो उन ऋषि मुनियों के एंटीनाज, उनके कान मम कर्ण रसायनम सुत अख्या ही कृपा करके सुनाइए। हम सुनना चाहते हैं मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कान के लिए क्या बने, रसायन बने। सदा सेव्या सदा सेव्या। श्रीमद्भागवती कथा यशा श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रयेत। तो ये भागवत महात्म्य तो आगे बढ़ाते हुए तो भागवत कथा का क्या करना चाहिए, सदा सेव्या, सदा सेव्या, श्रीमद् भागवत की सेवा करनी चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए, आरती उतारनी चाहिए भागवत की। खोल दिया आरती उतारी फिर बंद कर दिया, हाँ हमने सेवा की। भागवत की सेवा कैसे की जाए, श्रवण से। नित्यम भागवत सेवया, श्रवण करे भागवत का, श्रवण करे। नित्यम भागवत सेवया, तो ऐसे कोई करता है यशा श्रवण मात्र ही न, वो सेवा श्रवण की सेवा कही है। श्रवण करेंगे तो हरिश्चित्तम समाश्रयत, उस चित्त में प्रवेश करेंगे प्रभु, या उस चित्त में है कि पहले के प्रभु प्रकट होंगे, दर्शन देंगे इस कथा के श्रवण से। वांगमय मूर्ति से दर्शन होगा। जय श्री राम, रूप धारण करेंगे। तो भागवत कथा के श्रवण करते करते जैसे हम लोग शुद्ध होंगे, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चेतना का जो दर्पण है, चेतना का आत्मा का, आत्मा ये दर्पण आईना है, उस पर धूल जमी हुई है, मल जमा हुआ है न जाने कब से। इस कथा के श्रवण से हमारा हृदय, हृदय हम लोग कहते हैं, मन भी कहते हैं, अंतकरण भी कहते हैं, चित्त भी कहते हैं, उसी के अलग अलग नाम कहिए, उसकी शुद्धि होती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना का जो आईना है उसका मार्जन हो, फिर हम स्वयं को देख पाएंगे। आईने में धूल चढ़ी है तो आईना सामने रखने से कुछ दिखाई देगा, दिखाई देगा? तो देखना चाहते तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको थोड़ा पोछ लेते हैं, पहले पोछ लेते हैं, पुनः पुनः सामने रखा तो फिर दिखाई देता है। तो अब हमको दिखाई नहीं दे रहा, कल भी बात हो रही थी, कलो नष्ट दृशा हमेशा, कलयुग ने हमारे दृष्टि को नष्ट किया है और हम कौन इसी की पहचान हमको नहीं है। मैं कौन हूं, संसार भर के सारे उत्तर तो हम लोग ढूंढते हैं, लेकिन एक उत्तर, एक प्रश्न का उत्तर जो सबसे पहले जिस प्रश्न का उत्तर हमको पता लगवाना चाहिए था वो पता नहीं लगा। वो प्रश्न क्या है, मैं हूं कौन, तो मी नवेस, तो मी नवेस, अरे तू है कौन, वो भी नहीं ये भी नहीं, मैं कौन हो, मैं कौन हूं। फिर भगवान कौन है, क्या संबंध है मेरा भगवान के साथ, क्या है जीवन का लक्ष्य। मृत्यु होती है तो फिर होता क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या क्या गतियां होती है कि भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्। जब शरीर की हो गई राख तो फिर समाप्त हो गया, चार्वाक मुनि का कहना है। जब शरीर समाप्त हुआ तो सब कुछ समाप्त हुआ, ऐसी बात नहीं है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर है, देहांतर एक देह से दूसरे देह जाना है, देहांतर है। स्थानांतर जैसे होता है, देशांतर जैसे होता है, एक देश से दूसरे देश गया कोई तो उसको क्या कहते हैं, उसने देशांतर किया, स्थानांतर किया, और धर्मांतर भी चलता रहता है। धर्म में अंतर, एक धर्म में था दूसरे धर्म में गया। तो उसी प्रकार भगवान ने कहा देहांतर है, देहांतर प्राप्ति। शरीर को क्या होता है, हम एक शरीर को छोड़ते हैं दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, और ये हमारे दुख का कारण है। तो हम लोग यहां आए हैं नैमिषारण्य, जैसे बुद्ध देव कहे कहां गए, वे गया गए थे। मेरी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्या, ये देहांतर होते रहता है, ये बड़ी समस्या है। और जब शरीर मिलता है, जन्म होता है, तो फिर अंत में क्या होता है, मृत्यु भी होती है। सो बिग प्रॉब्लम, बड़ी समस्या है। और जन्म और मृत्यु के बीच में क्या होता है, जरा और व्याधि, बूढ़ापा है, व्याधि है। तो उस पर मैं कुछ उपाय ढूंढना चाहता हूं, इसीलिए हम लोग तीर्थ यात्रा में आए हैं। क्या उपाय है, मैं बड़ा परेशान हूं, क्लेश आक्रांत। कल हम लोग ये जो क्लेश है, ये जो त्रास है, इसे मैं मुक्त होना चाहता हूं। तो कौन करेगा, सरकार मुक्त करेगी, कौन करेगा मुक्त, कि हम धन कमाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। आप धनी हो इसीलिए आपको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ऐसी बात है क्या। तो पहले तो समझना चाहिए कि हमारी समस्या है क्या, कौन सी समस्या है, फिर उसका समाधान ढूंढे। समस्या ही पता नहीं है, समस्या क्या है, समस्या ही पता नहीं है, ये समस्या है। आप समझे, क्या समस्या है यही पता नहीं है, यही बड़ी हमारी समस्या है। कोई बताता तो नहीं, किंडरगार्टन में गया, फिर केजी हुआ, फिर प्राइमरी स्कूल हुआ, हाई स्कूल भी हुआ, फिर क्या हायर सेकेंडरी भी हुआ, फिर और तीन साल आगे बढ़ो, फिर ग्रेजुएशन भी हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, पीएचडी हुआ, और क्या क्या हुआ, लेकिन समस्या क्या यही किसी ने बताया नहीं। तो समस्या का पता लगवाने हम आए हैं। तो समस्या क्या है, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पारे मुरारे। ये समस्या है। शंकराचार्य ने ये प्रार्थना की मुरारी के श्री चरणों में, कृष्ण के चरणों में शंकराचार्य प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत हुआ, बहुत हुए हमारे जन्म, और कई बार हमारी मृत्यु हुई, जितने बार जन्म ले उतने बार मृत्यु हुई, और फिर इंटरवल कहां हुआ, इंटरवल के लिए हम जननी जठरे शयनम, जननी के जठर में, गर्भ में थोड़ा विश्राम किया, क्या वहां विश्राम है क्या, वहां जितनी परेशानियां जठर में है जननी के गर्भवास के समय, उतनी यातना और कहीं पर भी नहीं है। ऐसा वर्णन कपिल देव अपने आख्यान में श्रीमद् भागवत के शायद तृतीय स्कंद में सुनाए हैं, माता देवहूति को सुनाए। जीव को जो कष्ट होता है कि मां के गर्भ में हर योनि में गर्भ में गर्भवास के समय जो यातना है, ऐसी यातना जीवन भर नहीं हो। तो ये नहीं कि वहां आराम से वह लेटा हुआ है, लेटने के लिए वहां तो हाथ पैर फैलाने के लिए भी जगह नहीं है। ऐसा लेटने के लिए वहां कुछ नाइट लैंप भी नहीं है, या तो पंखा भी चल रहा है तो फिर खिड़की भी खोल देते हैं, हवा नहीं है। गर्भ में है हवा तो मांस जो भी थोड़ा उसको सांस देगी, कुछ जूस, उसी से उसका जीवन यापन चलते रहता है। बड़ी समस्या, और कई सारे कीड़े उसको काटते रहते हैं। तो मच्छर ने काट लिया तो हम लोग ऐसा, तो गर्भ में काट रहे तो क्या हाथ हिला के कुछ उस कीड़ों को हटाएगा? हटा भी नहीं सकता, हिल ही नहीं सकता। तो उसका वर्णन जैसे कपिल देव सुनाए हैं, कोई ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उसको सुने तो कहेगा नो मोर, ऐसे स्थान में पुनः नहीं जाना चाहूंगा, व्यक्ति संकल्प करेगा। भागवत का श्रवण करते करते तृतीय स्कंद में कपिल देव का वो उपाख्यान सुनेंगे, और बद्ध जीव जब गर्भ में होता है, एक महीने का होता तो वो कितना बड़ा, क्या कर उसकी कितने हाथ या पैर, फिर उंगली कब हो जाती, फिर नाखून कब आ जाते, फिर क्या क्या ये सब विस्तार से सुनाए हैं, जो डॉक्टर को भी पता नहीं, अब तक डॉक्टर को जो पता नहीं है, वो तो 5000 वर्ष पूर्व वेदव्यास लिखे या कपिल देव जब भी अपनी मां को सुनाए, तो जो भी ज्ञान आवश्यक है मनुष्य को जानने योग्य है, वो सब तो वेदों में पुराणों में इतिहासों में है। तो जन्म ये हमारी समस्या है, हम लोग जन्म नहीं लेंगे, जन्म ही नहीं लेंगे तो फिर क्या हुआ? फिर मृत्यु भी नहीं होगी। मृत्यु कब होती है? जन्म लेंगे तो मृत्यु होती है, लेकिन जन्म ही नहीं लिया तो मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, एक सॉल्यूशन मिल गया, मृत्यु नहीं होगी। फिर जन्म नहीं लिया तो बीमारी होगी? नहीं होगी। जन्म नहीं लिया तो फिर बूढ़ा हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। तो ये भागवत या गीता ऐसी विद्या, अध्यात्म विद्या विद्यानाम जो पढ़ाता है, ताकि हमको पुनः जन्म ही नहीं लेना पड़े। पुनर्जन्म न विद्यते, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगोदक है, गीता या भागवत कैसा है, मानो गंगा का जल है, गंगा का जल पान कर रहे हैं, ये कथा पान। तो इसको पीकर लाभ क्या है? पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः जन्म नहीं। फिर होगा क्या? मामेति, मेरे धाम में आएंगे, मैं जहां रहता हूं वहां आएंगे जीव। स्वर्ग में जाओगे तो पुनः जन्म है, स्वर्ग में जाने से भी जन्म है लेकिन वैकुंठ में जाने से जन्म नहीं है, ये अंतर है। स्वर्ग में जाने का लाभ कुछ सीमित है, लाभ वैकुंठ में जाने से लाभ ही लाभ है। गरीब कथा भागवत शापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। कथा भागवत शापि, तो ये भागवत कथा जहां भी होती है, हो सकता है किसी के घर में भी हो सकती है भागवत कथा, तो क्या होगा? तद्गृहं तीर्थरूपं, जिस घर में ये भागवत कथा होती है वो घर बन गया क्या? तीर्थ बन गया। कि भागवत कथा हो रही तो वहां भगवान आ गए, जहां भगवान है वहां सारे तीर्थ है, सारी पवित्र नदियां वहां है। तो घर में क्या होना चाहिए? सदैव भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन होना चाहिए। कोई पढ़ रहा है, कोई सुना रहा है, या टेप चल रही है, कीर्तन हो रहा है, तो घर तीर्थ स्थान। वसताम पापनाशनम, और वहां के निवासियों के पाप का विनाश करेगा वो स्थान, वो गृह जहां कथा हो रही है, और वो तीर्थ स्थान बन गया। पाप करेगा ही नहीं व्यक्ति उस वातावरण में, पाप करेगा ही नहीं, काम क्यों बढ़ाए? पहले पाप करेंगे फिर पाप से मुक्त होने का प्रयास। हम अपना कार्य बढ़ाते हैं, काम बढ़ाते हैं, पाप ही नहीं करो, या पहले का किया हुआ, अनजाने किया हुआ जो पाप है उससे मुक्त हो जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमने ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया, प्रभु के नाम का उच्चारण किया, उनकी शरण ली, उनकी कथाओं का श्रवण किया, तो पाप की राशि को क्या हुआ? हमने आग लगा दिया। वेरी गुड, जल रहा है तो फिर ठंडी के दिन है तो उससे अच्छा है, जल रहा पाप जल रहा है, हम मुक्त हो रहे। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, गीता का भागवत का श्रवण कर रहे हैं, ये भक्ति भी है, ज्ञान भी मिल रहा है हम लोगों को, तो ये ज्ञान की अग्नि भी है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, कल शौनक मुनि कह रहे थे आपके पास जो ज्ञान है, इस ज्ञान का जो प्रकाश है, उस ज्योति है, वो क्या करेगी? हमारे अज्ञान को मिटा देगी, अज्ञान का विध्वंस, अज्ञान का नाश, संसार भय नाशनम, और उसी के साथ संसार का भय का भी नाश हुआ। अज्ञान के कारण भय है, ज्ञान हुआ तो फिर भय नहीं है। लेकिन ज्ञान कैसा हो कि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ए जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर लो तो और दुख नय, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। ए जीव कृष्ण दास ए विश्वास, इस बात पर विश्वास हो जाए, इस बात का ज्ञान हो जाए कि ये मैं तो जीवात्मा हूं, और ये मैं जीवात्मा कृष्ण का दास हूं। कर लो तो और दुख न, फिर दुख तो समाप्त हो गया उस व्यक्ति के लिए, दुख रंच मात्र भी परेशान नहीं करेगा। जिसको ज्ञान हुआ है कि मैं भगवान का दास हूं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। भागवत का महात्म्य समझाते हुए यह कहा जा रहा है कि गंगा के स्नान से या गया की यात्रा की, काशी बनारस की यात्रा की, प्रयाग की यात्रा की, कुछ ही नाम दिए हैं, मतलब और भी तीर्थों की यात्रा हो सकती है हमने की, तो उसका जो फल है उस फल की तुलना श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जो फल प्राप्त होता है उस दोनों की तुलना संभव नहीं है। यात्रा से भी जो फल मिलता है तीर्थ यात्रा का फल और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण का फल यहां अधिक बताया है। और फिर हम लोग यात्रा भी कर रहे हैं और साथ में कथा भी कर रहे हैं तो ये डबल है कि नहीं। केवल यात्रा ही कर रहे हैं लेकिन कथा नहीं कर रहे हैं, फिर बहुत कम लाभ है। शुकशास्त्र कथा याश्च फलेन समताम नहीं, इसकी तुलना नहीं हो सकती, इसमें साम्य नहीं है, इसमें अंतर है। एक भागवत कथा श्रवण का लाभ तो अधिक, तो कथा जो सुनते हैं कुछ चर्चा तो हो चुकी है, तो यह महात्मा में भी जब गोकर्ण ने कथा की धुंधकारी के लिए, अपने भाई के लिए कथा सुनाई दक्षिण भारत में, और जब जैसे सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित कथा सुनाए तो अन्य कई सारे महात्मा ऋषि व्यक्ति वहां एकत्रित थे, तो गोकर्ण जब कथा सुनाए तो केवल धुंधकारी ही नहीं अन्य कई सारी जनता भी वहां आ गई कथा सुनने के लिए। तो कथा तो सभी सुने, तो कथा का समापन हुआ, 7 दिवस कथा चल रही थी, कथा संपन्न हुई और अंतिम आहुतियां चढ़ाई जा रही थी, अंतिम वचन कहे जा रहे थे कथा के, तो इतने में वहां पर आनीतानी विमानानी, वहां कई सारे नहीं एक विमान आ गया। कितने आ गए? एक विमान वहां आके उतरा और इस गोकर्ण धुंधकारी की ओर इशारा करते हुए संकेत कर, आप आइए, आप आगे बढ़िए। इतनी बड़ी सभा, असंख्य लोग कथा का श्रवण कर रहे थे, तो एक व्यक्ति को बुला लिया, उसके जो भी एयर होस्ट समझते ना, एयर होस्टेसिस चलती है, तो वो विमान आया था वैकुंठ से, तो विमान के चालक कप्तान एयर होस जो आए थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति आप आइए आ गए, विमान में बिठाया, दरवाजे बंद हो, अब होने ही जा रहे थे, इंजन शुरू होना था, इतने में गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः श्रवण समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फ फल भेदः कुतो जाता प्रब्रुवन्तु हरिप्रियः। हरिप्रिय विमान को लेके कौन आए थे? हरि के जो प्रिय भक्त है। कुछ दूत आए थे विमान को लेके, तो उन हरि प्रियों को, जो भी एक से अधिक आए थे इसलिए या बहुवचन का उपयोग हुआ है, हे हरि प्रियो, हे हरि प्रिय, हरि के प्रिय भक्तों, वैकुंठ से आने वाले भक्तों, हुआ क्या? कथा तो सभी ने सुनी, लेकिन आप तो एक ही व्यक्ति को वैकुंठ ले जा रहे हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। कथावाचक तो एक ही है, एक ही विषय वस्तु सभी ने सुनी भी, लेकिन मुक्त और भक्त तो एक ही बन के वैकुंठ के लिए अभी प्रयाण होगा, लेकिन औरों को आप क्यों नहीं ले जा रहे हो? फल भेद भेद को था ये श्रवण, कथा श्रवण का जो फल है इसमें भेद क्यों हो रहा है? या कुछ पक्षपात हम देख रहे हैं? हरिदास उचिहु, अब हरिदास उसके उत्तर में कहते हैं, ये समझने की बात है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। हाँ, सभी ने तो सुना, लेकिन सुनने सुनने में अंतर है। बात तो एक ही बात सभी ने सुनी एक ही साथ, लेकिन सुनने सुनने में अंतर है। श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सभी ने किया, लेकिन मनन सभी ने नहीं किया। श्रवण होता है कथा के समय, श्रवण होता है, और मनन कब होता है? मनन कब होता है? चिंतन, मनन, जो भी सुना था उसको पुनः मन में लेके विचार करना, सोचना, ये मनन कहलाता है। तो श्रवण तो सभी ने किया, लेकिन मनन तो एक ही व्यक्ति कर रहे थे, और वे थे धुंधकारी। श्रवण करके जैसे ही निकले तो गेट के बाहर पहले तो महाराज हरि बो, हरे कृष्ण, हरे हरे हरे, तो फोन ऑफ करने के लिए तो कहा ही था। तो कब से देख रहे थे, 10:30 कब बजते हैं, तो बाहर आते ही क्या किया, फिर पुणे के साथ कनेक्शन जोड़ दिया, पहुंच गए पुणे, पहुंच मनी मन से पुणे पहुंचे, या पुणे को यहां पर लाया जहां पर हम हैं। हरी 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 वो हरे। फिर और क्या हुआ, फिर और क्या हुआ, फिर और बात शुरू हुई व्यापार की। वहां कौन से लाइन में आप हो? हाँ, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग चलता है मेरा। वो कहां पर है? आओ कलमना मार्केट के पास, हमारा प्रॉपर्टी डीलिंग। हाँ, मेरा भी कोई दूर नहीं है, ये है वो है फलाना। तो नैमिषारण्य के वन में प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू हो गई। उसको वही छोड़ के आए थे, लेकिन हमने उसको यहां पहुंचा दिया, उसने पीछा किया। तो श्रवण और चिंतन कहिए, या यहां पर मनन इस शब्द का प्रयोग किया है, रिफ्लेक्शन, अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन, यू रिफ्लेक्ट, जो सुना है उसका पुनः पुनः विचार करें। जैसे पशु चुगाली करते हैं, पशु क्या करते हैं, उसको चुगाली कहते हैं। पशु जो खाते हैं, घास खाते हैं, तो खाते वक्त तो ऐसे ही थोड़ा चबा लिया और फिर पेट भर देते हैं। पेट जब भर गया तो फिर पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे छाया में, और फिर पशु क्या करता है, रवंत करता है, चुगाली कहते हैं। मतलब जो खाया था उसको पुनः मुख में लाके उसको पुनः ऐसा अधिक चबा के रस का सारा मिश्रण करा के फिर अपने सिस्टम में भेजेंगे, तो फिर उससे रस और फिर उससे रक्त और फिर आगे जो जो भी बनना है वो बनेगा। मतलब उपयोग की चीज तभी बन जाती है जब चुगाली हो जाती है उसकी, नहीं तो ऐसा ही स्टॉक कर दिया, पेट तो भरा हुआ है लेकिन वो काम की चीज नहीं है। उसको और चबा के लार के साथ उसको मिश्रित करा के और भी जो जूसेस है, रस है, वो मिला के उसका उसको हजम करना होगा, फिर उसका रस बनेगा, रक्त बनेगा, फिर शक्ति आएगी। तो ये है, ये चुगाली जो पशुओं की है वही है मनन, कथा के बात करने की विधि, मनन या चिंतन या आपस में बोधयंतः परस्परम, या फिर वो लिखी हुई नोट्स है उसको हम खोल के देख सकते हैं, या प्रसाद के बाद जो सत्र होने वाला है, भक्त बैठेंगे आपस में चर्चा करेंगे, किसी बात का विशेष आस्वादन हमने किया, ये बात बड़ी सुंदर कही महाराज, वो समझ में आई, लेकिन ये समझ में नहीं आई, किसी को समझ में आई तो बता सकता है, और कोई जिसको समझ में आई हो बात, या फिर यही से फोन करके हम बता सकते हैं, पुणे फोन करके आज की कथा का ये विषय है, और उनका वहां से भाषण सुनने के बजाय हम लोग यहां से अपना कुछ प्रवचन सुना सकते हैं, वे भी लाभान्वित हो गए। मतलब पुणे को यहां पहुंचाने के बजाय हमने नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य को पुणे पहुंचा दिया एडवांस में, हमसे भी आगे नैमिषारण्य वहां पहुंच गया। तो ये हरिदास कह रहे हैं जो विमान लेके आए थे कि हम सभी को इसीलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि सभी ने श्रवण तो किया, हाँ ये तो हम मानते हैं, लेकिन सभी ने मनन नहीं किया। श्रवणम तु कृतम सर्वैर्न तथा मननम कृतम फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। और फिर विश्वासो गुरुवाक्येषु, यही बात कही है, जो वचन कहे जा रहे हैं उसमें विश्वास होना चाहिए श्रद्धा के साथ। जैसे हम पहले कह रहे थे, सुन तो लिए लेकिन कैसे सुन रहे, श्रद्धा के साथ, श्रद्धया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होगा, किंतु संशयात्मा विनश्यति, कोई संशय करता है तो वो विनाशकारी बात है। दो बातें, एक श्रद्धा से सुना ज्ञान प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त हुई, श्रद्धावाल श्रद्धावान को लभते ज्ञानम, ज्ञान का लाभ होगा, भक्ति का लाभ होगा, लेकिन संशयात्मा, कोई संशय आत्मा है, शंका करता है, शक रखता है, सारे प्रश्न उठाता है, उसका मन बड़ा बड़ा बुद्धिजीवी है, स्वयं को बड़ा इंटेलेक्चुअल समझता है, तो कुछ तो प्रश्न पूछना बुद्धिमता का लक्षण भी है। लेकिन कई सारे उठपटांग प्रश्न मन में उठते हैं, परेशान करते हैं, तो सुनी हुई बात को, सत्य बात को, कोई बात समझ में नहीं आई तो कोई शंका, कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन हर बात पर क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह, तो संशयात्मा विनश्यति। तो कैसे संभव है? 88,000 तो ऋषि मुनि, ये बात कैसे संभव है? यही के इसी धाम के एक व्यक्ति जो कोई मंदिर आश्रम भी चलाते हैं इसी धाम में, हमारे भक्त वहां गए तो उनको वो कह रहे थे, नहीं नहीं नहीं, इतने ऋषि मुनि कैसे हो सकते हैं? उस वक्त माइक्रोफोन तो नहीं था, वो वही कह रहे थे। हमने शुरुआत में ही कहा कि कैसे संभव है, लेकिन कल ही हमारे भक्त गए और हमको भागे दौड़े आए और पूछने लगे, आपने तो कहा कि 88,000, लेकिन हमने इस बगल के आश्रम पता लगवाया, नहीं 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 कि माइक्रोफोन नहीं था तो कैसे उन्होंने बात की होगी। और 1,000 वर्षों तक चलता रहा, नहीं नहीं ये कलयुग का, कलयुग के प्रारंभ में नहीं हुई कथा, सुद्गोस्वामी नहीं सुनाए, वो दूसरा युग हुआ, शायद सत्ययुग होगा, यह तो स्पष्ट लिखा है। कलयुग का प्रारंभ होने पर ही सारे मुनि यहां पहुंचे, कलयुग का नाम लिया है, इसमें कोई संदिग्ध असंदिग्ध कोई, बड़ी स्पष्ट बात है। तो इसी धाम के ही लोग या नाम के महात्मा अगर ऐसा प्रचार करने लगे तो कैसी श्रद्धा? ये सारे प्रश्नों को उत्तर उनको देना चाहिए, लेकिन यात्रियों के मन में और प्रश्न उठाएंगे वे। ये जो प्रश्न उनके हैं उसकी पुष्टि करेंगे, हाँ हाँ ये प्रश्न सही है, हाँ, थोड़े ही 88,000 ऋषि उनको उन्होंने कथा सुनाई, कैसे संभव है? बिना माइक्रोफोन से नहीं सुनाया जा सकता। लेकिन उस समय की जो परिस्थिति है जिसको हमने जानने का प्रयास किया, और केवल बाहर का वातावरण ही नहीं, मन की स्थिति, मन की शांति और कहने वाले वक्ता का जो प्रभाव और उसका तेज, वो नहीं समझने से फिर हम लोग ऐसे प्रश्न उठा सकते हैं। तो विश्वासो गुरुवाक्येषु कहा, तो श्रद्धापूर्वक एक तो जो सुना रहे हैं उनको अगर हम पहचानते हैं वे कहां से परंपरा में है कि नहीं इत्यादि इत्यादि कुछ बातों का उनको ज्ञान है, तो फिर जिस व्यक्ति से हम लोग सुन रहे हैं व्यक्ति के वचनों में विश्वास रखते हुए सुनेंगे तो लाभ है। श्रद्धावाल लभते ज्ञानम, पुनः श्रवान्ते ते सर्वेषां। तो फिर हरिदासों ने कहा ठीक है हम आपका समझ तो रहे हैं, आप तो चाहते थे कि हम सभी को ले जाए, सभी को तो नहीं ले जा रहे हैं, तो अब क्या करना, आप पुनः कथा की व्यवस्था करो, कथा करने के लिए आप पुनः तैयार हो जाइए और इस जनता को पुनः कथा में बुलाइए और उनको शुरुआत में ही कहना कि क्या करना होगा, ये कथा का केवल श्रवण ही नहीं करना है, कथा का क्या करना है, क्या करना है, मनन करना है, श्रद्धापूर्वक श्रवण करना है। तो फिर हम उस कथा के अंत में फिर हम केवल एक यान नहीं कई सारे जंबो जेट लेके आ जाएंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, सभी को हम लोग भगवत धाम ले जाएंगे। और आपको ले जाने के लिए तो विशेष व्यवस्था होगी, भगवान स्वयं आएंगे हे गोकर्ण जी और स्वयं आपको अपने धाम ले जाएंगे। औरों के लिए तो दूत को भेजेंगे, लेकिन आपको ले जाने के लिए तो साक्षात भगवान आ जाएंगे। श्रावणे मासी गोकर्ण तो कथा मुचे तथा पुनः, तो श्रावण मास में पुनः उन्होंने कथा प्रारंभ की। सप्तरात्रवतीं भूया श्रवण श्रवणम तई कृतम पुनः, तो सात रात्रि सात दिवस उन्होंने पुनः कथा का श्रवण किया, और इस वक्त बड़े ध्यान पूर्वक बड़े उत्कंठा के साथ श्रवण भी किया, और बाद में फोन ऑफ केवल कथा के समय ही नहीं रखा, उन्होंने फोन ऑफ दिन में भी ऑफ ही रखा उन्होंने। और जब भी चर्चा होती थी तो जो कथा सुनी थी वही विषय बन जाता था कथा का, चर्चा का, और कोई विषय ही नहीं, तो सुनी हुई बातों को पुनः पुनः स्मरण और उन बातों को नया पुनर्जीवित किया जाता था। कोई बातें भूल रहे थे पुनः याद दिलाते थे एक दूसरों को। विमानै सह भक्तै, तो पुनः कथा हुई, विधि पूर्वक कथा का श्रवण हुआ, मनन चिंतन हुआ, तो कई सारे यान आ गए, कई सारे विमान आ गए। और इस वक्त संकेत क्या हुआ, सभी उठिए उठिए, सभी उठे, हाँ आप इस विमान में जाइए, पुणे के लोग इस विमान में बैठिए, और लातूर के इसमें, नागपुर के लिए विमान है, ऐसा सभी के लिए विमान थे। पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि गोकर्णम तु समालिंग्य अकरोद स्वयं दृशम हरि। और स्वयं हरि पहुंचे थे जैसे वचन दिया था, तो हरि ने अपने पांचजन्य शंख का ध्वनि किए और गोकर्ण को आगे बढ़ के गोकर्ण को आलिंगन दिए भगवान श्री हरि। गोकर्णेन स गोपालम गोलोकम गोपवल्लभम कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः। तो भक्त वत्सल उस गोकर्ण को जिन कथा का अध्यापन किया, अध्यापन पढ़ाई थी कथा, सुनाई थी कथा, भगवान उनसे बड़े प्रसन्न थे। तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम, तो श्री कृष्ण उस कौन गोकर्ण को गोलोक लेके गए, जो गोलोक योगी दुर्लभम अन्य योगियों के लिए जो दुर्लभ है जो धाम, वो धाम प्राप्त हुआ गोकर्ण को। इतिहासमिमं पुण्यं शांडिल्योपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। तो इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट में मुनीश्वर शांडिल्य बड़े प्रेमानंद में मग्न होके सुनाते रहे, तो उनसे सुना। तो एक परंपरा में ये कथाएं सुनी सुनाई जाती है। तो यह सुत गोस्वामी कह रहे कि हरिदास आऊ चुक जी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कथा ये कथा जो हम अभी सुन रहे थे इसके संबंध में चर्चा शांडिल्य मुनि चित्रकूट में भी, जैसे हम लोग यही कथा अभी यहां कर रहे हैं। ये कथा जो श्रवण करता है जहां जहां जाएंगे वहां कथा होगी। तो आप कहोगे हमने कथा चित्रकूट में सुनी, नैमिषारण्य में सुनी। हम कहेंगे हमने एक कथा यहां के जो वक्ता है हमने वहां सुनी थी, वो कहेंगे हमने वो कथा वहां सुनी थी। इस प्रकार प्रचार प्रसार कथा का होते रहता है। तो इस कथा का ऐसे कथाओं का जब आयोजन होता है तो देशे देशे विरक्ता ए वैष्णवा कीर्तनोत्सुकः। तो कीर्तन के लिए कथा के लिए उत्सुक रहते हैं महात्मा वैष्णव, फिर वो गृहस्थ भी हो सकते हैं, उनको आमंत्रित करना चाहिए। यह सप्ताह कथा विधि को यह छठवें अध्याय में सुनाया है चार कुमारों ने। तो उसमें वो पत्र में निमंत्रण पत्रिका में क्या क्या लिखना चाहिए ये भी यहां लिखा है। कथा हो रही है आप आइए, आप सभी दिन नहीं आ सकते हो न अवकाश है, तो एक दिन के लिए आइए इस पत्र में लिख सकते हैं। क्षणवत्रैव सुदुर्लभ, एक क्षण की भी कथा बड़ी दुर्लभ मानी गई है। तो सात दिवस नहीं तो छह दिन आइए, पांच दिन, चार तीन नहीं दो नहीं तो एक दिन तो आइए, ऐसा लिखना चाहिए। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे करुणानिधान। हे भगवान, प्रार्थना करनी चाहिए कथा के प्रारंभ में, प्रार्थना करनी चाहिए मैं संसार में डूबा हूं, संसार सागरे मग्नम, संसार सागर में मैं तो तल्लीन, संसार सागर में भव सागर में तो मैं मग्न हूं, तल्लीन हूं, डूब रहा हूं, डूब के मर रहा हूं, मर के जी रहा हूं, जी के मर रहा हूं। कर्म मोह ग्रहीतांगम, कर्म और मोह इसमें लिप्त हूं मैं, माम उद्धर, मेरा उद्धार कीजिए। अभी अभी प्रार्थना कीजिए आप, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं यहां तो हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। माम उद्धर, मेरा उद्धार कीजिए, किससे? भवार्णवात्, भव अर्णव से, भव अर्णव भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। कथा विरामो, कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम्। तो मध्याह्न के समय कथा को विराम देना चाहिए, तो हम थोड़ी देर में कथा को विराम देने वाले हैं। तो फिर कहा है, तत्कथामनु कार्यम वै कीर्तनम वैष्णवस्तदा। तो कथा को तो विराम है, लेकिन उस विराम का जो समय है उस समय कहा है वैष्णव को पुनः एकत्रित होके उस कथा संबंध के कोई कीर्तन है, भजन है या कोई चर्चा है वो करनी चाहिए। यहां ये विधि बताई है, तत्कथा अनु, कथा के अनुसार। कीर्तनम वैष्णवस्तदा, और जो कथा के समय सर्वोत्तम बात यह है कि उपास्य सप्तरात्रम वै, सात दिवस सात रात्रि तक पूरा उपोषण पूरा उपवास करके कथा का श्रवण करें। आप तैयार हो? ठीक हो, नहीं तैयार हो, तैयार नहीं है तो फिर कहा है पूरा उपवास नहीं कर सकते। घृतपानम पयपानम, तो घी पी के थोड़ा थोड़ा घी या कुछ पयपानम मतलब दूध, दूध पान करके फिर आप मतलब अन्न नहीं फिर कथा का श्रवण कीजिए। ठीक है, उससे भी काम नहीं बन रहा है आपका। फलहारे न, फलहार कीजिए। और उससे भी संतुष्ट नहीं तो फिर पूरा भोजन खाइए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात तो ये है, भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। भोजन करके ही कथा में फिर मन लगता है। तो फिर भोजन करना ही उचित है। क्या उपयोग है उस उपवास का, जो कथा में विघ्न करो, यदि कथा में अगर विघ्न बना रहा है उपवास तो न उपवासो वरः प्रोक्तः, उपवास श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। तो हर व्यक्ति अलग अलग है, किसी के लिए अन्न तो किसी के लिए जहर बन जाता है। तो जहां तक भोजन की बात है ये बातें कही, और कुछ बातें हैं, एक दो मिनट में हम लोग समापन करते हैं। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दंभम मोहम द्वेषम दूरयेत् च कथाव्रति। कथा का व्रत जिन्होंने लिया है, आप कौन हो? कथाव्रति हो, आप लिख सकते हो, याद रखिए, कथाव्रत, कथा का व्रत, जैसे एकादशी व्रत, कई सारे ब्रह्मचर्य व्रत, राम ने एक पत्नी व्रत लिया था, तो कथा का जो व्रत लिए हैं, और जो कथा में आए सभी को व्रत लेना चाहिए, इतने दूर आए और हम लोगों ने कथा का लाभ नहीं उठाया, ये सुनने के उपरांत भी कि तीर्थ यात्रा से अधिक लाभ कथा में है, प्रयाग की यात्रा काशी यात्रा से अधिक लाभ कथा श्रवण में है, तो क्यों ना लाभ उठाए हम। तो जिन्होंने संकल्प किया कि मैं कथा सुनूंगा सारे सात सत्रों में, ऐसे कथाव्रती को काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य जो षड्रिपु है उनको दूर रखना चाहिए, दंभ मोह द्वेष विशेष प्रयास करना चाहिए इनसे, इनको दूर रखने का। ये सारे कौन हमारे? ये शत्रु है हमारे, तो इनसे सावधान। और उल्टे कैसे गुणों का हृदयंगम करना चाहिए, कैसे गुणों को? सत्यम शौचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा उदार मानसाम तद्वत एवं कुर्यात कथाव्रति। तो ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो सदाचार के जो विचार है, सत्य शौच्यम मौनम विनयम नम्रता इत्यादि का पूरा अभ्यास करे, ये समय और काम क्रोध इत्यादि द्वेष इत्यादि को दूर रखे। ब्रह्मचर्य का पालन करे कथा के समय और निंदा किसकी नहीं करे, किसकी किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वेदों की निंदा नहीं करनी चाहिए, शास्त्रों की निंदा, वैष्णव निंदा, विप्राणाम ब्राह्मण निंदा, गुरु निंदा, गाय की निंदा, स्त्री की निंदा, स्त्री राज महताम राजा की निंदा, कोई महापुरुष की निंदा, वर्जयेत य कथावृति, तो इसका ये वर्ज बताया। निंदा किसी की नहीं करनी, उसमें से कुछ नाम यहां गिना है। एवं कृत्वा व्रत विधिम उद्यापन यथाचरित। तो ये इस प्रकार इनका पालन करना चाहिए। वैसे बड़े विस्तृत यह विधि बताई है, हम ऐसी छलांग मारे एक जगह से दूसरे जगह पर। जय शब्द नमः शब्दम, बीच बीच में जय हो ऐसा कहना चाहिए, जय हो, अच्छी बात बड़ी बात, जय हो जय राम जय, ऐसा कहते जाना चाहिए। निताई गौर प्रेमनंदे हरि हरि ओ। और एक अंतिम बात, सत्ते स्वर्गे च कैलासे वैकुंठे नास्ति रसः अतः पिबन्तु मद्भाग्या मा मा मुञ्चत कर्णिचित्। तो भागवत कथा का जो रस है, सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं, ऐसा रस न तो स्वर्ग में, न तो सत्य लोक में, न तो कैलाश में, वैकुंठ में भी नहीं। अस्ति रसम अयः न अस्ति अयम रसः, ऐसा मधुर रस, अतः पिबंतु इसीलिए आप पीजिए, मद भाग्या मा मा मुंचत कर्णिचित, और इसको मत छोड़ो मत छोड़ो मत छोड़ो, इस रस को जरूर पियो, इस रस को ऐसा पुनः प्रोत्साहित यह किया जा रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।